हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अब जवाब दीजिए मुझे मेरे सवालों का, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ये सब? आखिर गुनाह क्या है मेरा जिसकी आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं मुझे? क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरी सच्चाई पर आपको विश्वास नहीं? क्यों हर बार अपने शब्दों के तीखे बाणों से मेरी रूह को घायल करते हैं? क्यों अपने इल्जामों से मेरे दिल को छलनी कर टुकड़ों में बिखेर देते हैं? आखिर चाहते क्या हैं आप? जवाब दीजिए मुझे, क्यों लेकर गए थे आज आप मुझे अपने साथ उन रईसों की पार्टी में जहां जाने की मेरी औकात ही नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि एक बार फिर सबके सामने मुझे जलील कर सके, मेरी इज्जत का तमाशा बना सके? या आप मुझे वहां मौजूद अमीर बदतमीज अय्याश लड़कों का मन बहलाने के लिए लेकर गए थे? आपको तो यही लगता है ना कि मैं एक बदकिस्मत चरित्रहीन बाजारू लड़की हूँ जो पैसों के लिए किसी भी मर्द के साथ हमबिस्तर हो जाऊँ? इसलिए लेकर गए थे ना आप मुझे वहाँ ताकि मेरी इज्जत का सारा आम नुमाइश कर सकें, अपने इल्जामों को सच और मुझे एक चरित्रहीन लड़की साबित कर सकें? तो क्यों आई बीच में? करने देते ना उसे अपनी मनमानी जैसे आप करते हैं। दोनों कमरे में पहुंचे ही थे कि धृति ने एक के बाद एक कई सवाल अर्णव पर दागे। उसका चेहरा दर्द से सना था और वो डबडबाई आंखों से जवाब के इंतजार में उसे ही देख रही थी। अर्णव ने उसके लगाए इल्जामों को सुना तो तुरंत ही एतराज जताया, धृति मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अर्णव के इतना कहते ही धृति गुस्से और दर्द के मिले जुले भावों के साथ चीख पड़ी, झूठ मत बोलिए मिस्टर सिंह, अगर आपके ऐसे इरादे नहीं होते तो आप मुझे उस हाई प्रोफाइल पार्टी में लेकर नहीं जाते। सबसे हमारे रिश्ते की हकीकत छुपाकर मुझे एक मामूली पीए बताकर सबकी नजरों में मुझे एक गोल्ड डिगर कैरेक्टरलेस लड़की का खिताब नहीं दिलाते। ये जानते हुए कि मैं उस पैसों वाली दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती, वहाँ सहज नहीं थी, वहाँ सबकी निगाहें अजीब तरह से घूर रही थी मुझे, जैसे उन गिद्धों को अपना नया शिकार मिल गया है और मौका मिलते ही वे मेरे जिस्म को नोच खाएंगे। आप मुझे वहां अकेले ना छोड़कर गए होते? यही सवाल और बातें इस वक्त धृति के दर्द की सबसे बड़ी वजह थी। धृति की बातें सुनकर पहले तो अर्णव चौंक गया, फिर संभलते हुए बोला, धृति मुझे नहीं पता था कि मेरे गैर मौजूदगी में वहां ये सब हो जाएगा। अर्णव की आवाज में सॉफ्टनेस थी, जैसे अपनी बेगुनाही का सबूत देते हुए धृति की गलतफहमी को मिटाने और उसे समझाने की कोशिश कर रहा हो, पर धृति आज अलग ही जोन में थी। उसे ये सब बातें महज झूठी दलीलें लग रही थीं। उसे पूरा यकीन था कि अर्णव ने सब जानबूझकर किया है, सिर्फ उसे तकलीफ पहुंचाने और जलील करने के लिए। अर्णव ने जैसे ही अपने पक्ष में सफाई दी, धृति एक बार फिर दर्द से तड़पते हुए तेज आवाज में बोली, क्यों नहीं पता था आपको ये? आपको तो सब पहले से पता होता है ना? आप इंसान थोड़े ही हैं, आप तो भगवान हैं, तभी तो आपको पता है कि मैं एक चरित्रहीन लड़की हूँ जिसे साबित करने की कोशिश आप हर पल करते हैं। तभी तो आप बस मौका तलाशते हैं मुझे बदकिस्मत साबित करने का, अपने इल्जामों से मेरी आत्मा को छलनी करने का, मुझे जलील करने का। तो ये कैसे नहीं पता था आपको? धृति, अर्णव ने कुछ कहना चाहा, पर धृति ने हाथ दिखाकर उसकी बात काटते हुए गुस्से से आगे कहा, नहीं, आज आपको कुछ बोलने की इजाज़त नहीं है। हमेशा आप बोलते हैं और मैं खामोशी से आपके सभी ताने इल्ज़ाम सुनती हूँ। आज आप मेरी बात सुनिए, बताइए मुझे कि क्यों आपको मेरी सच्चाई पर भरोसा नहीं? क्यों आपको मैं एक बाजारू लड़की लगती हूँ? आखिर ऐसा क्या किया है मैंने जो आप मुझे एक गोल्ड डिगर कैरेक्टरलेस लड़की समझते हैं जो पैसों के लिए किसी के साथ भी हमबिस्तर हो जाए? बताइए मुझे कि क्यों आप मुझे बदकिस्मत समझते हैं? क्यों मेरी सच्चाई पर भरोसा नहीं आपको? क्यों लगता है आपको कि मैं उस तरह की लड़की हूँ? क्यों आप मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करते कि मैं ऐसी नहीं हूँ? मेरा किसी लड़के से कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। एक काम कीजिए, आप आज खुद टेस्ट कर लीजिए मुझे। पति है ना मेरे, तो जताइए पति होने का हक। कीजिए अपनी मनमानी, आज मैं खुली छूट देती हूँ आपको। आप मर्दों को तो पता चल जाता है ना कि लड़की वर्जिन है या नहीं, तो बढ़िए मेरे साथ इस रिश्ते में आगे। उसके बाद शायद आपको भी विश्वास हो जाए कि आपके अलावा मेरा किसी लड़के से कोई रिश्ता नहीं रहा। पहले कभी कोई मेरे इतने करीब नहीं आया जितने करीब आप आए हैं। मैं एक चरित्रहीन बाजारू लड़की नहीं हूँ, प्योर हूँ मैं, और आपके मेरे चरित्र पर लगाए सभी इल्ज़ाम, मेरे किरदार पर उठाए सभी सवाल झूठे और बेबुनियाद हैं। लीजिए, कर लीजिए आज अपनी हसरत पूरी और खुद फैसला कीजिए कि मैं सच्ची हूँ या आपके लगाए इल्ज़ाम। धृति इतने कदर टूट कर बिखर गई थी कि इस दर्द का अंत करने और अर्णव को अपनी बेगुनाही साफ चरित्र पर विश्वास दिलाने के लिए उसके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने को भी तैयार हो गई थी, सिर्फ इसलिए ताकि दोबारा अर्णव कभी उस पर बदचलन और बदकिस्मत होने का इल्ज़ाम ना लगाए। उसकी बातें सुनकर अर्णव स्तब्ध रह गया था। धृति ने अपने कंधे पर लगी पिन निकाल दी और इसके साथ ही उसकी साड़ी का आँचल उसके सीने से ढलक गया। ये देखकर अर्णव ने हड़बड़ाहट में अपना चेहरा फेर लिया और घबरा कर बोला, क्या कर रही हो धृति, पागल मत बनो। पागल तो मैं हो गई हूँ आपके इस व्यवहार से, आपके इल्ज़ामों से, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं मेरे पास जिस पर चलकर मैं आपको अपनी प्योरिटी और सच्चाई पर विश्वास दिला सकूं। इसलिए आजमा लीजिए आप मुझे और फिर खुद फैसला कीजिए कि मैं सच्ची हूँ या आपके मेरे प्रति सोच सही है। कम से कम इसके बाद आप मेरे चरित्र पर सवाल तो नहीं उठाएंगे, बेबात मुझे अपनी सोच से जलील तो नहीं करेंगे। धृति ने अब अर्णव की ओर कदम बढ़ाए तो अर्णव ने तुरंत कदम पीछे की ओर हटाते हुए कहा, धृति स्टे अवे फ्रॉम मी, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। अर्णव की ये बात सुनकर धृति के लबों पर दर्द भरी मुस्कान फैल गई। इतना कुछ तो गलत कर ही चुके हैं आप मेरे साथ, अब रह क्या गया है करने को। और ये गलत नहीं क्योंकि मैं खुद अपनी आत्मा को मारकर आपको खुद पर अधिकार दे रही हूँ। हर बार आप मेरे चरित्र पर सवाल उठाकर मुझे कतरा कतरा मार रहे हैं। अकेले में ही नहीं, अब तो भरी महफिल में मेरी इज्जत का तमाशा बनाने लगे हैं, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं। इसलिए कर लीजिए अपनी मनमानी, आजमा लीजिए मुझ पर अपनी ताकत, शायद उसके बाद आपको मेरी प्योरिटी पर विश्वास हो और दोबारा मुझे आपके घटिया इल्जामों को सुनने की नौबत ना आए जो मेरी आत्मा को छलनी कर जाती है। धृति की जिद देखकर और उसकी बातें सुनकर अर्णव, जो खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर चला गया और उफान मारकर बाहर आने लगा। अर्णव ने अपने मुट्ठियों को कस लिया और धृति की ओर मुड़ते हुए गुस्से से चीखा, धृति बकवास बंद करो अपनी, कुछ नहीं करना मुझे तुम्हारे साथ, अपना पागलपन छोड़ो और जाकर चेंज करके सो जाओ। मजाल थी जो अर्णव की निगाहें धृति के चेहरे से जरा भी नीचे सर की हों। वह तो देख रहा था उसकी आंखों में आंसुओं के बीच तैरती दर्द में लिपटी सच्चाई को, जो चीख चीख कर बयां कर रही थी कि धृति वैसी नहीं जैसा वह उसे समझता है। अर्णव कुछ पल उसकी आंखों में गहराई से देखता रहा, फिर गुस्से में लंबे लंबे कदम भरते हुए वहां से चला गया। पीछे रह गई धृति अपने दर्द के साथ, बिल्कुल तन्हा, बिल्कुल अकेली। धृति के चेहरे पर दर्द उभर आया, उसने अपने पलकों को झुका लिया, आंखों से अश्रु की धारा बह चली। अर्णव वहां से निकलकर सीधे जिम में पहुंचा और गुस्से में पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाने लगा। धृति के सवाल, उसके लगाए इल्ज़ाम उसके कानों में नुकीले भालों जैसे चुभ रहे थे। आंखों के सामने रह रहकर धृति का आंसुओं से भीगा, दर्द से सना चेहरा उभर आता। जहन में धृति की वो दो निगाहें कौंध जाती जो अर्णव को सोचने पर मजबूर कर देतीं। जो बातें आज धृति ने कही उसने अर्णव को हिला कर रख दिया था। सच और झूठ में फ़र्क करना उसके लिए भारी पड़ने लगा था। धृति आज अपनी सच्चाई और प्योरिटी साबित करने के लिए जो करने को तैयार थी उसकी कल्पना भी कभी अर्णव ने नहीं की थी। जिस तरह से धृति ने सब कहा उसने अर्णव के दिमाग में बनी अपनी छवि को बुरी तरह खंडित कर दिया था और अर्णव चाहकर भी उसकी सच्चाई को झुठला नहीं पा रहा था। अर्णव इस वक्त काफी स्ट्रेस में था। एक तरफ दिमाग में सवालों का झंझावात सा उठ रहा था और वो बुरी तरह उलझ गया था कि आखिर किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं, कौन सच है और कौन महज एक छलावा। दूसरी तरफ धृति को इस कदर तकलीफ में देखकर, उसे यूं टूटकर बिखरते देखकर उसका मन बेचैन था। रह रहकर कई बातें, धृति के साथ अब तक बिताए पल उसके जहन में घूमने लगते और उसके लिए असली धृति को पहचानना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। क्या हो गया है तुझे अर्णव, चोट उसे पहुंचाता है और दर्द तुझे होता है। अपने शब्दों से आहत उसे करता है पर बेचैन तू होता है, क्यों उसे दर्द में देखकर तू तड़प उठता है। ये सवाल अर्णव के जहन में उठे थे जिनके जवाब शायद वो जानता था कि धृति उसे इफेक्ट करने लगी है, उसका उसके प्रति झुकाव बढ़ गया है, धृति से उसे फर्क पड़ने लगा है और उसके दिल में उसे लेकर कुछ अनकहे से एहसास पनपने लगे हैं, धृति को लेकर उसके जज्बात बदलने लगे हैं। पर वो अकेले में भी इन बातों को मानने से कतरा रहा था, खुद को समझा रहा था कि ये ठीक नहीं है, उसे इजाज़त नहीं धृति के लिए ऐसी फीलिंग्स को अपने मन में बसाने का। पर दिल ने कहाँ कभी किसी की सुनी है, उसे भला कहाँ कोई बंदिशों में बांध सका है। वो तो हमेशा से स्वच्छंद आकाश में उड़ने वाला उन्मुक्त पंछी रहा है, थोड़ा शैतान थोड़ा मन मौजी, जो सिर्फ खुद की सुनता है, हर वो काम करता है जिससे हम उसे रोकते हैं, और यही उसकी प्रकृति है। दिल और दिमाग हमेशा हमारे मन में द्वंद्व पैदा करते हैं, और ये फैसला हमें करना होता है कि जो हमारा दिल कह रहा है वो सही है या दिमाग। अर्नब भी इस वक्त अपने दिल और दिमाग के बीच बुरी तरह उलझ गया था। काफी देर तक वो पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाता रहा। सर से पांव तक पसीने से तर होने के बाद कहीं जाकर अर्नब थमा और अपने कोट, वेस्ट कोट व टाई को खोलकर वहीं काउच पर फेंकने के बाद उसने शर्ट के ऊपर के दो बटन खोले, मानो उसे सांस नहीं आ रही थी और घुटन हो रही हो, और शर्ट की स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड करते हुए किसी थके हारे खिलाड़ी जैसे वहीं पसर गया। एक बार फिर दिमाग में एक तूफान सा उठने लगा। एक तरफ दिल था जो धृति की सच्चाई पर विश्वास करने को मचल रहा था, तो दूसरी तरफ दिमाग जो आज भी उसकी सच्चाई को झूठ, धोखा और छलावा साबित करने की दलीलें पेश कर रहा था। अब देखना ये था कि दिल और दिमाग के बीच छिड़ी इस जंग में जीत किसकी होती है और अर्नब क्या फैसला लेता है धृति के बारे में। यहाँ एक तरफ अर्नब अपने सवालों में उलझा हुआ था और वहाँ धृति अपने दर्द के सागर में डूबी हुई थी। बाहर होती हल्की बौंदाबांदी अब झमाझम बारिश में बदल चुकी थी और साथ ही उठ रहा था एक तूफान जो सब तबाह करने पर तुला था। ऐसा लग रहा था जैसे धृति के दर्द पर आज बादल रो रहे थे और उसके दुख में आज प्रकृति सब तबाह करने पर आमादा थी। सारी रात बारिश होती रही और उस बरसात में दो दिल बेचैनी से अपने अपने उलझनों और दुखों में डूबे रहे। अपने ख्यालों में गुम अर्नब को एहसास ही नहीं हुआ कि कब रात बीती और अगली सुबह बाहों को फैलाए इस नए दिन का आगाज करने लगी। अपने दिलो दिमाग के बीच जूझते अर्नब की नज़र जब अनायास ही घड़ी पर पड़ी और उसने देखा कि सुबह के 6 बज चुके हैं, तो उसने अपनी सोच पर विराम लगाया। अचानक ही उसके जहन में धृति का ख्याल कौन था और उसने अपना सर पकड़ लिया। उसे याद आया कि किस हालत में वो बीती रात धृति को अकेला छोड़कर आया था। मन व्याकुल हो गया और चेहरे पर तनाव के भाव उभर आए। यकीनन उसे धृति की चिंता सताने लगी थी। धृति का ख्याल मन में आते ही अर्नब वहां से उठा और तेज कदमों से अपने रूम की ओर बढ़ गया। अर्नब रात को गया सीधे सुबह उसने कमरे में कदम रखा। दरवाज़ा खुला देखकर अर्नब थोड़ा चौंका, पर फिर उसे शादी वाली रात याद आ गई। तब भी वो यूं ही धृति को बिखरी अवस्था में छोड़ कर गया था और अगले दिन उसे दरवाज़ा खुला ही मिला था। अर्नब के मन में एक हुक सी उठी, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाला और तेजी से कमरे के अंदर कदम रखते हुए सीधे बेड पर नज़र डाली, पर बेड खाली था। अर्नब ने बेचैनी से पूरे कमरे में नज़रें दौड़ाई, पर धृति कहीं नज़र नहीं आई। आगे बढ़ते हुए अर्नब ने बाथरूम, चेंजिंग रूम सब चेक किया, पर धृति कहीं नहीं मिली। अर्नब को अब घबराहट होने लगी और मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे जो उसके मन में भय पैदा कर रहे थे। अर्नब ने उन ख्यालों को खुद पर हावी होने से रोकते हुए कदम पूल साइड बढ़ा दिए। धृति को ढूंढते हुए अर्नब जब पूल साइड आया तो वहां का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। पूल के साइड में धृति फर्श पर पेट के बल बेतरतीब से लेटी हुई थी और पूरी तरह से भीगी हुई थी। अब भी उसके रात वाले ही कपड़े पहने थे, न कपड़े बदले थे और न ही ज्वेलरी ही उतारी थी। जैसे पार्टी में गई थी वैसे ही फर्श पर पड़ी हुई थी और रात भर हुई बारिश के पूल का पानी उफान मारकर फर्श पर बिखर गया था। उसी पानी के बीच धृति पड़ी थी, बिल्कुल बेजान सी। धृति को इस हालत में देखकर एक पल को अर्नब की धड़कनें ही थम गईं और मन में डर बढ़ने लगा कि कहीं धृति को कुछ हो न जाए। एक पल को उसके कदम ठिठके, पर अगले ही पल वो बदहवास सा उसकी ओर दौड़ गया।